سورت فتح کے بعد سورت حجرات، جس میں وہ خوبیاں ہیں کہ اگر امت میں بھی آ گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحابہ والا عروج عطا فرمائے گا. اس سورت کا ایک اور نام سورت الاخلاق بھی ہے، کیونکہ واقعی یہ کسی بھی معاشرے کو امن والا بنانے میں جو کسی قوم میں اخلاقی خوبیاں ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے اخلاقی طور پر انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا سبق دیتی ہے. اور حجرات سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے. 18 آیتیں ہیں، مدنی سورت ہے، 5 ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک پہلی آیت ہے، اللہ کے حقوق. آیت نمبر 2 سے 5 رسول اللہ کے حقوق. آیت 6 سے 13 مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق. اور آیت 14 سے 15 حقیقی ایمان اور اسلام کا فرق. اور 16 سے 18 منافقوں کے دلوں کا علاج اور اللہ کی صفات پہ غور و فکر کرنا. اور بنیادی مضمون، منافقت سے بچتے ہوئے اللہ کے حقوق ادا کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اسلام پہ عمل کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس میں عورتوں کی عمومی بیماریاں جو اخلاق کے نام پہ ہوتی ہیں زبان کے متعلق، وہ بھی ہیں. مردوں میں بھی ہوں گی، آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن عموماً دیکھا جائے تو عورتیں ہی زیادہ ایک دوسرے کی بات چیت کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا، اسی لیے میں نے بھی بول دیا کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں جاتے دیکھا ہے، اور تم اپنی زبان کے غلط استعمال اور شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آئیے شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. کیسے؟ زندگی میں اللہ کے نبی کے آگے چلو نہیں. آج تو آپ نہیں ہیں، تو آپ کی حدیث کے آگے مت بولو. جہاں صحیح حدیث پیش کر دی جائے، اس کے آگے یہ نہ کہو کہ فلاں عالم تو یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں. کیا پتہ چلا کہ مقام صحیح ہونا تو بات بھی صحیح ہوتی ہے. آپ ماں باپ کو ماں باپ سمجھیں گے تو ان کی بات مانیں گے، ٹیچر کو ٹیچر سمجھیں گے تو اس کی بات کو مانیں گے. اور آپ ماں باپ کو ماں باپ نہ مانیں، ٹیچر کو ٹیچر نہ مانیں، شوہر کو شوہر نہ مانیں، تو یہ جو ہماری بیچ میں خرابیاں آتی ہیں نا رشتوں میں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ پھر اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں. پھر ظاہری ادب کی بات بتائی گئی. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئے. صحابہ نے جا کے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ تو رونے لگے، کہا میری آواز اونچی ہے. تو اللہ تو کہہ رہے نبی کے آگے اونچی نہ بولو، تو میں تو وہاں جا کر گناہ گار ہوتا ہوں. تو پھر ان کو بلایا گیا کہ نہیں، یہ نہیں مطلب، آپ کی فطری طور پہ آواز اونچی ہے، مطلب یہ ہے کہ ادب رکھو، عاجزی رکھو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، ہفتے اعمال، اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہو. آج بھی دیکھیے کیسی آوازیں اٹھتی ہیں حدیثوں کے خلاف، سنتوں کے خلاف، کیسے لوگ بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی باتیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. کہاں ہم کسی دوسرے کے اوپر نظر رکھیں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بھی اسی بات کو کہا تھا. لوگ مسجد نبوی میں آ کر اونچی بولتے نہیں تھے. امام مالک جوتا نہیں پہنتے تھے وہاں جا کر. کہتے تھے صاحب قبر کے لیے، جو قبر میں ہیں اس وقت، ان کی عزت کے لیے کر رہا ہوں، تو اپنے لیے عمل کی بات لکھیں. کبھی جس طرح قرآن کو سن کر آگے نہیں بولتے نا، تو حدیث کے معاملے میں بھی کبھی بھی آگے سے بات پڑھ کر نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب دے دے، بادب با نصیب. ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ یا رسول، اونچی بات سے پکارتے ہیں. اسی طرح یہی کہہ دیا، بدو لوگ آ کے کہتے تھے یا محمد اخرج، حالانکہ صحابہ نے کبھی آپ کو یا محمد نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہتے تھے، یا ایھا النبی کہتے تھے. لیکن نام تو آپ اپنے باپ کا نہیں لیتے، نبی کا کیسے لے سکتے ہیں. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر سے پکارتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ آپ کے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے حق میں بہتر تھا، تھوڑا سا انتظار کر لیتے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ایک اجتماعی ادب دیا گیا، افواہ سازی نہ پھیلاؤ، افواہیں نہ پھیلاؤ، کوئی بات آئے تو پہلے ریسرچ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا، اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پریشان ہو. इज्तमाई ज़िंदगी में कई बार सिर्फ नुकसान इसलिए होता है हम सुनी सुनाई बात आगे कर देते हैं, घर टूट जाते हैं, शौहर बीवी नाराज़ हो जाते हैं, औलादें माँ बाप से, माँ बाप औलाद से बदज़न हो जाते हैं इस वजह से। तो आदत बनाए, कोई मैसेज आगे नहीं करूँगी जब तक उस पर हवाला नहीं होगा, दीन की बात है। और दुनिया की बात कोई आपसे कहे आपके मुझे क्या, मिन हुस्न इस्लामी तर्क हुमाला, यानी आदमी का हुसन ये कि वो बेकार बातों को छोड़ दे। कोई हम न्यूज़ एडिटर हैं, हमारा कोई काम लोगों को खबरें देना है? अपने काम से काम रखें, कभी किसी की टो ना रखें, आप खुद मुतमईन रहेंगे। वालमो, जान लो तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है, अगर बहुत से मामलात में तुम्हारी बात मान लिया करे तो तुम खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगे, मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी, अल्लाह हमें भी दे दे, और इसको तुम्हारे लिए दिल पसंद बना दिया। ईमान दिल को खूबसूरत करता है, चेहरे को भी खूबसूरत कर देता है ईमान, अमल को भी खूबसूरत कर देता है, और कुफर और फिस्क और नाफरमानी से तुमको मतनफ़िर कर दिया, अल्लाह हमें भी इन चीज़ों से नफ़रत दे दे। ऐसे ही लोग अल्लाह के फजल व एहसान से सीधे रास्ते पर हैं, और अल्लाह अलीम और हकीम है। फिर झगड़ों में पड़ने की बजाय लोगों की लड़ाइयाँ कराने की बजाय सुलह करा दो, और अगर अहले ईमान में से दो गिरोह आपस में लड़ जाएं और तो इनके दरमियान सुलह कराओ, फिर अगर इनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। हम किसका साथ देते हैं? माँ का। कब? जब भाभी के साथ माँ की जंग होती है। कहते नहीं माँ का साथ तो देना है ना, नहीं, आप अपनी दोस्त का साथ ना दें। हकायक देखिए हदीस में, दोनों की बात सुनो फिर बात करो। देखिए ये पुरमन माशरे की कहानी है, रेसिपी ऑफ अ पीसफुल सोसाइटी। अगर आप में ये सब करेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात है कि झगड़ा आग की तरह होता है, अगर आग को बुझाएं ना तो आपको भी लग जाएगी। तो दूसरों की लड़ाई बढ़ाने की बजाय उसको ठंडा कीजिए, फिर अगर वो पलट आए तो इनके दरमियान अदल के साथ सुलह करवा दो। यानी सिर्फ चुप चुप करके भी नहीं सुलह करानी थी, चुप चुप बच्चियाँ नहीं बोलती चलो माफ़ी मांगो, चलो पाँव पकड़ो, गलत तरीक़ है। उस बीमारी को दूर कीजिए जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, वक्त सीतो और इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, तो मोमिनात क्या हुई फिर? बहनें हुई। एक खूबसूरत वहदत पर पिरोया जा रहा है आपको मुझे, सब एक हैं। अब जब मुसलमान सब एक है तो फिर क्या पंजाबी सिंधी मुहाजर का फ़र्क होगा? पठानों में शादी करेंगे, सिंधियों में करेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। फरमाइए सब भाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। क्या कहते हैं? नहीं जी नहीं, वो सिंधी कहते हैं सिंधी अच्छे हैं। आपको तो हम तो इतनी उम्मतों में बट गए, हम तो एक मुल्क में रहने वाले नहीं मानते। कहते हैं ये लाहौरी हैं, ये सियालकोटी हैं, ये कराची के लोग ऐसे होते हैं। आप अमेरिका में जाएं, मिसाल है, कुछ न्यूयॉर्क में रहते हैं, कोई ह्यूस्टन में रहते हैं, कोई बॉस्टन में रहते हैं, कोई अटलांटा में रहते हैं। अब कभी नहीं सुनेंगे लोग कहेंगे न्यूयॉर्क वाले बड़े आला लोग हैं और ह्यूस्टन वालों में नहीं हम शादी करेंगे, वो नीचे रहते हैं ये ऊपर रहते हैं। सब कहते हैं अमेरिका अस लिखा हुआ तो बस रिश्ता कर दो कि लड़का अस में रहता है। अस क्या है? US। वहाँ तो हम इस पर बड़े खुश हैं। मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ आप में कोई और भी ना भी खूबी होती ना तो मेरी शादी आपसे फिर भी हो जानी थी। मेरे घर वालों ने कहना था कि लड़का अमेरिका में रहता है, हमारे लिए क्राइटीरियन है ना। तो पाकिस्तान में अब बताइए ज़रा, कराची में रहने वाला कैसे आला हो गया और पंजाब में रहने वाला कैसे हल्का हो गया? तो ये सारी फ़िरकाबंदी काटने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद ज़ुबान की हिफाज़त। या अय्युहल लज़ीन आमनू ला यस्ख़र क़ौमुन मिन क़ौमिन असा यकूनु ख़ैरन मिनहुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हों। सच है कि नहीं? कितना प्यारा क्राइटेरियन दिया। कभी किसी की बुराई करने को दिल चाहे ना, बस इस बात को याद रखिएगा, आपस में एक दूसरे पर तान ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है, जो लोग इस रविश से बास ना आए वही ज़ालिम हैं। अल्लाह हमें ऐसी गंदी बातों से बचाए। और ये याद रखिए खुद पसंदी की बात है, जो अपने आप को पसंद करेगा वह दूसरों को बुरा ज़रूर कहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो। गुमान के पहले ही सोच लेना फ़लाँ मेरा दुश्मन, फ़लाँ तो मुझसे जलती है, फ़लाँ तो मुझे देख के जल के राख हो गई, फिर गीबत। यहाँ से एक स्टेप शुरू होगा, देखिएगा, पहले बदगुमानी है, फिर तजस्सुस है, फिर गीबत है। आप नोट कीजिएगा इस आयत की तरतीब को। पहली चीज़, बहुत गुमान करने से बचो कि बस गुमान गुनाह होते हैं। तजस्सुस ना करो और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है? ज़रा अपने ऊपर लीजिएगा इस आयत को। कुरान की आयत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना चाहे? छुरी कांटा लाओ, एप्रन पहनो, चलो गर्दन काटो, चलो जहाँ से टांग की बोटी काटो, स्टेक बनानी है। घिन आती है कि नहीं सोच के? देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो, तो फिर गीबतें क्यों करते हो? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह तवाबुर रहीम, अल्लाह तला बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। तो नियत करें आज, आप देखिएगा बहुत सारा टाइम बच जाएगा आपका और मेरा जब हम गीबत छोड़ देंगे। नहीं खाना मुझे अपनी बहन का गोश्त, नहीं खाना मुझे अपने भाई का गोश्त। और ये वो खराबी है कि जो जिना से भी शदीद है। हदीस में आता है अलगीबत और शद्दु मिन जिना। पूछा ये कैसे होता है? भाई जिना तो बहुत बड़ी चीज़ है। कहा जिना करने वाला तो फिर भी तौबा करता है, गुनाह समझता है, और उसमें तो दो लोग बर्बाद हुए ना। गीबत में तो पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाता है, सुकून बर्बाद होता है, और ऐसे लोग अक्सर तौबा भी नहीं करते। वो कहते नहीं हम सच बोल रहे हैं, साहबा ने भी ये कहा था हम सच बोल रहे हैं। कहा तभी तो गीबत है, वरना तो बुख्तान हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं इस बारे में, इसकी अलग से भी तफसीर मौजूद है। 3 नशिस्तों में हमने ये पूरी सूरत की थी, बहुत ही डिटेल से है कि जिसको आप बाकी पढ़ सकते हैं, कि जिसमें अपने अमल की बातें मिलती हैं। बस अभी तो इन इशारों को हम अपने लिए काफ़ी समझें। फिर अगला हुक्म, या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन वउन्सा, लोग हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियाँ बना दीं ताकि तुम्हें एक दूसरे को पहचानो। दैट्स इट, सिर्फ ये हिस्सा है हमारी ज़ात का। आपकी क्या ज़ात, मेरी क्या ज़ात? क्या यहाँ आकर हमने किसी की ज़ात पूछी? आपने मुझसे पढ़ने से पहले मेरी ज़ात पूछी थी? तो रिश्ते करते हुए क्यों पूछते हैं? सोचने की बात है। सिर्फ इसलिए कि हम आला समझते हैं ना, अपनी ज़ात में दूसरे को नहीं लाना चाहते। कहते हैं हमारी आला ज़ात इनकी पता नहीं क्या है, पढ़ने का क्या, वो तो कोई भी पढ़ा दे। लेकिन याद रखे किसी मामले में, ना दीन के मामले में ना दुनिया के मामले में, कभी किसी की ज़ात को ना डिस्कस कीजिए। दरहकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है। लेना चाहते हो बाइज्जत लोगों का साथ, रिश्ते करना चाहते हो अपनी बच्चियों के नेक लड़कों से, तो उसको ढूंढो जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेजगार है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुत्तकी को ढूंढो। हदीस में आता है अपनी बच्चियों के रिश्ते करो तो मुत्तकी से करो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी बेटी को खुश नहीं भी रखेगा ना, फी जमाना जिसको आप कहते हैं, लाड नहीं करेगा, रोज़ उसको होटलों में नहीं ले जाएगा, उसको फूल नहीं ला के देगा, चलो कोई बात नहीं, वो उस पर जुल्म नहीं करेगा, बेकार किस्म की मोहब्बत नहीं जतलाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी के साथ संजीदा है। उसको ज़रूरत ही नहीं फूल देने की कि बेगम को भी खुश कर लूँ, इसको पता ना चल जाए मैं और किस किस से प्यार करता हूँ, ये सोचनी होगी। तो तकवा की बुनियाद पर रिश्ते होने चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और बाखबर है, उसको सब कुछ पता है हम क्या करते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करूँ मैं भी और आप भी कि अल्लाह ताला उम्मत को इन छोटी छोटी चीज़ों से निकाल कर एक बड़े काम पे ले आए। कभी लोगों ने हज़रत बिलाल की ज़ात नहीं पूछी थी, काबा में अज़ान देते हुए देख कर, सब एक ही ज़ात के हैं, ऊँची ज़ात अल्लाह की। फिर एक और बात, ये बदवी कहते हैं हम ईमान लाए, इनसे कह दो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो कि हम मती हो गए। यानी अभी तो ईमान के शुरू के दिन है, अभी तो तुमने सिर्फ टेस्ट किया इसको। वलम यद खुलेली ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार करो तो वो तुम्हारे अमाल के अजर में कुछ कमी ना करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। हकीकत में मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक ना किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। अल्लाह हमें सच्चा बना दे। कुला तो अल्ली मोन अल्लाह बिदीनी को, कह दो क्या तुम अल्लाह को अपना दीन जतलाते हो, यानी क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की खबर देते हो? हालांकि अल्लाह आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को जानता है, वो हर शय का इल्म रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनसे कहो अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। अगर तुम वाकई अपने ईमान के दावे में सच्चे हो, अल्लाह आसमान और ज़मीन की हर पोशीदा चीज़ का इल्म रखता है, और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाहों में। तो मुहासबा ही कर ले तो बहुत है। अल्लाह से दुआ है कि हमारा अखलाक खूबसूरत करे। चलिए आज दिल से अपने लिए दुआ तो करें कि अल्लाह सूरत हुजरात के मुताबिक मुझे कर दे, जो कुछ आपने इसमें बताया ये सारा कुछ मेरे में डाल दे, और इज्जतें नहीं ख़राब करनी। हदीस में आता है कि मोमिन मोमिन का भाई है और उसकी हिफाजत करता है, उसकी गैर मौजूदगी में उसका दिफा करता है। ये नहीं कि एक गीबत करना शुरू हुई तो आप भी शुरू हो गई साथ सबकी मिलके उसके। फरमाया हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है माल, इज्जत और आबरू। ये मुस्लिम की रिवायत है 6707 और मोमिन वाली रिवायत अबू दाऊद की थी 4920। دوسروں کی جگہ پہ خود کو رکھ لیں. یہ سمپل بات ہے صورت احزاب پہ عمل کرتے ہوئے. میں نے آج کے بعد دوسروں کے ساتھ وہی کرنا ہے جو میں اپنے لیے چاہتی ہوں. اور یہ حدیث ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حقیر نہیں سمجھنا. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.